हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिसके आगे सिद्धार्थ खुराना रो रोकर गिर पड़े। बस उसे उस रोते हुए, अपने सामने टूटे हुए, पूरी तरह से बिखरे हुए देखना चाहता हूँ। शायद उस दिन ही मेरे दिल को सुकून मिलेगा। ये रहा सुधारा हुआ। कुछ सोचकर रणविजय अपने कमरे में चला गया। वहीं दादी ने बिना समय गमाए सीधे जाकर आकांक्षा को फ़ोन लगा दिया था। बड़े ही पोलाइट अंदाज में दादी बोली थी, आकांक्षा, हम जानते हैं कि इस समय तुम्हारे परिवार पर क्या क्या बीत रही है, लेकिन बेटा, ऐसे समय में तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तुम तो जानती ही हो ना, सिद्धार्थ का दिल कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। झलक के जाने के बाद से तो ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपने मुंह पर ताला ही लगा लिया हो, किसी से खास बातें भी नहीं कर रहा है। तो बेटा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम सिद्धार्थ के ऑफिस जा सकती हो उससे मिलने के लिए? प्लीज़ बेटा। जैसे ही दादी ने इतनी रिक्वेस्ट की, आकांक्षा का दिल तो किया कि वो खुशी से नाच उठे। जो बात वो चाहती थी वही पूरा हो रहा था। लेकिन जल्दी ही आकांक्षा ने अपनी आवाज़ को थोड़ा धीमा और मायूस बनाते हुए कहा, दादी, आप परेशान हो जाती हैं। आप तो जानती ही है ना कि इस समय मैं अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं अपनी मॉम से प्यार करती हूँ, लेकिन झलक ने जानबूझकर मेरी मॉम को मजबूर कर दिया था अपना सच पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए। अगर वो ऐसा ना करती तो शायद आज ये सारी सिचुएशन पूरी दुनिया के सामने क्रिएट ही नहीं होती। जो बातें छुपी हुई थीं वे छुपी हुई ही रहती। आकांक्षा की बातें सुनकर दादी ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, जो होना था वो तो हो चुका, और वैसे भी वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। अब उसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। और बेटा, हम आज में विश्वास रखते हैं, जो कल था या जो आने वाला कल है उसमें नहीं। दादी की बात सुनकर आकांक्षा ने मुंह से हामी भरते हुए कहा, ठीक है दादी, जैसे ही मैं अपनी माँ के पास से थोड़ा फ्री हो जाऊंगी, मैं मिस्टर खुराना से मिलने जरूर जाऊंगी। डोंट वरी दादी, वो ठीक हो जाएंगे। ये कहकर आकांक्षा ने फ़ोन काट दिया। वहीं दरवाजे पर नैना ओबेरॉय खड़ी थी और आकांक्षा की सारी बातें सुन चुकी थी। आकांक्षा ने फ़ोन पर कहा था कि वो अपनी माँ के साथ है, जबकि नैना ओबेरॉय के साथ तो उसने ठीक से बात तक नहीं की थी। अपना मतलब निकल जाने के बाद उसने अपनी माँ को भी दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका था। ये सब देखकर नैना के दिल में अफसोस भर गया। तभी पीछे से ईशान ने आकर नैना के कंधे पर हाथ रखा और उसकी ओर देखकर कहा, क्या देख रही हो? शायद तुम सोच रही हो कि ये हमारी ही औलाद है। जब हमने अपने फ़ायदे के लिए न जाने कितने लोगों का दिल दुखाया है, तो ये भी हमारी ही औलाद है। ये भी अपने फ़ायदे के लिए हमारा दिल दुखाने से पीछे नहीं हटती। देखा तुमने? ईशान की बातें सुनकर नैना की आंखें भर आईं। वो बोली, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मेरी बेटी ने आखिरी कल मेरे साथ क्या किया, लेकिन कम से कम उसे अपनी माँ से झूठी मोहब्बत का दावा तो नहीं करना चाहिए था। ये कहते हुए नैना की आवाज़ में कड़वाहट साफ छलक रही थी। फिर उसने ईशान को हल्की मुस्कान के साथ देखा और कहा, चलो, अब मन में जो इतने दिनों से डर छुपा हुआ था वो भी खत्म हो गया। हमें डर था कि अगर सच दुनिया के सामने आ गया तो कैसा लगेगा। अब टेंशन खत्म हो गई है। वैसे भी आकांक्षा का तरीका भले ही गलत था, लेकिन उसने मेरे लिए समाज में एक अलग तरह की छवि बना दी। नैना आगे बोली, तुम जानते हो, आज मुझे एक समाजसेवी संस्था से फ़ोन आया था। वे महिलाओं के लिए अलग से ऑफिस खोल रहे हैं और अपने जीवन की कहानी शेयर करने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया है। तुम्हें नहीं पता मुझे ये सब कितना अच्छा लग रहा है। ये सुनकर ईशान मुस्कुराते हुए बोला, पॉपुलैरिटी, वो भी हमदर्दी वाली, बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये तुम्हें न जाने कहाँ से कहाँ ले जाएगी। इतना ही नहीं, जिस संस्था से तुम्हें फ़ोन आया था उसी के साथ साथ एक पार्टी नेता का भी फ़ोन आया था। वो भी तुमसे मिलना चाहते हैं और तुम्हें सम्मानित करना चाहते हैं, क्योंकि तुमने एक नाजायज़ लड़की को जन्म देने के बाद भी एक माँ होने का सबूत दिया। अब पूरे समाज के सामने तुम्हारे लिए एक बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं। ये सुनकर नैना पूरी तरह खुशी से झूम उठी और बोली, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि उस लड़की के जाने के बाद भी वो मुझे इतना मान सम्मान दिला जाएगी। मज़ा ही आ गया। अब तो हमारे परिवार को ऊँचाइयों पर जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ये कहते हुए नैना खुशी से झूम उठी। वहीं दूसरी ओर झलक अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी। उन इंसिडेंट को हुए लगभग 2 दिन से ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन झलक के चेहरे से मायूसी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अनामिका ने झलक के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने की कोशिश की थी और जानबूझकर उसे हर तरह की खबरों और न्यूज़ से दूर रखा था। वो नहीं चाहती थी कि टीवी चैनलों पर चल रही खबरें झलक को फिर से उसकी यादों में ले जाएं। इसी बीच आरव भी बार बार झलक के पास आकर उसका हालचाल लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन झलक उसे वो सम्मान और अपनापन नहीं दे पा रही थी जिसकी वो हकदार था। फिलहाल झलक को गार्डन में मायूसी की हालत में बैठे देखकर अनामिका तुरंत उसके पास आई और बोली, हेलो मैडम, आखिर कितने दिनों तक मातम मनाओगी? इन सब चीज़ों को कब तक पकड़ कर बैठी रहोगी? नॉर्मल लाइफ में क्यों नहीं लौट आती हो यार? प्लीज़, मुझे तो वही बिंदास उठपटांग बातें करने वाली झलक पसंद है, प्लीज़ यार। अनामिका आगे बोली, झलक, अब तो हमारा रिश्ता भी बदल चुका है, कम से कम उसकी तो कदर करो। मैं मरी जा रही हूँ तुम्हारे मुँह से अपने लिए बहन शब्द सुनने के लिए। तुम समझ रही हो ना मेरी बात?
मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे लड़ो, झगड़ा करो, मेरी ड्रेस मांगो, हम दोनों झगड़ा करेंगे जैसे बहनों में होता है। मेरा मेकअप बिना पूछे इस्तेमाल करो, मैं तुमसे लड़ूंगी, पापा से शिकायत करूंगी। कैन यू बिलीव दैट? छोटी छोटी चीजें करनी है मुझे। प्लीज यार झलक, लौट आओ, अब बस करो प्लीज। अचानक अनामिका की बातें सुनकर झलक हल्की तिरछी मुस्कान के साथ बोली, बहन तुम जानती हो, पहली बार जब मैं अपनी बहन आकांक्षा से मिली थी, उसने मुझ पर सीधा हाथ उठा दिया था। ना जाने कितनी बार उसने मुझे जलील किया, एक एक करके आंखों के सामने मेरी कितनी बार बेइज्जती की, सारी यादें आज भी मेरे सामने हैं। झलक की आवाज भराई, तुम जानती हो आखिरी बार उसने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे इस लायक नहीं छोड़ेगी कि मैं अपनी जिंदगी जी सकूं। उसने मुझे दो ऑप्शन दिए थे, या तो मैं अपनी जान दे दूं या फिर किसी कोठे में बैठ जाऊं। मैंने बहन का सिर्फ वही रूप देखा है अनामिका, झलक ने सिर झुकाते हुए कहा। मैं अभी कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं हूं, मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। मिस्टर आरव मल्होत्रा, जिन्हें तुम मेरे पिता कह रही हो, क्या सच में वही मेरे पिता हैं? मुझे अभी तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। अनामिका झलक के मन की हालत अच्छे से समझ रही थी। उसने तुरंत कहा, मैं जानती हूं कि बहन के नाम पर तुम्हारी आंखों के सामने सिर्फ आकांक्षा का चेहरा आता होगा, लेकिन मेरी तरफ तो देखो, मैं तुम्हारी बहन बनने से पहले तुम्हारी अच्छी दोस्त हूं। अगर अभी तुम मुझे बहन नहीं मान सकती, तो कम से कम दोस्त तो मान सकती हो ना। प्लीज यार, उसे छोड़ दो और नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाओ, अनामिका ने झलक का हाथ पकड़ते हुए कहा।
मुझे तुम चाहिए, आई जस्ट नीड यू। तुम जानती हो इस वक्त हमें कैसा लग रहा है? मैं चाहती हूं कि तुम फिर से नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौटो। और रही बात सिद्धार्थ खुराना, आकांक्षा और उन सब लोगों की जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है, तो हम मिलकर उन्हें सजा देंगे। ऐसी सजा देंगे कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, पावर है, पोजीशन है, तुम क्या कुछ नहीं कर सकती हो। पर कम से कम तुम अपनी जिंदगी को तो स्वीकार करो, अपनी जिंदगी को तो अपनाओ, वापस तो आओ। प्लीज यार, मेरी बात मानो और अपनी जिंदगी की ओर लौट आओ। इस तरह मायूस मत रहो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। प्लीज जस्ट कम बैक, वापस आ जाओ।